ओम शांति। आप सभी बाबा के जवाबदार बच्चे यहाँ बैठे हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां लौकिक और अलौकिक की निभा रहे हैं। जिम्मेवारियां निभाते हुए जीवन मुक्त स्थिति रहे, वैसे तो हम सब जानते हैं कि जीवन मुक्त स्थिति देवताओं की ही होती है। सतयुगी देवताओं के लिए कहते हैं वो जीवन मुक्त थे, या राजा जनक के लिए कहते हैं कि उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। राज्य कारोबार संभालते हुए उन्होंने जीवन मुक्त पद प्राप्त कर लिया, और बाबा अपने एक एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में रहने का वरदान देता है। वैसे तो कलयुग के अंदर बहुत सी जवाबदारियां बंधन के रूप में रहती हैं, बोझ अथवा बंधन दुख का मूल कारण है, और इसीलिए लोग समझते हैं कि हम इस जीवन से ही मुक्त हो जाएं, मोक्ष का प्रयास करते हैं, भक्ति के अंदर तप के अंदर ये कामना रख करके तपस्या करते हैं कि हम इस संसार से मुक्त हो जाएं। लेकिन बाबा ने हम सबको ये बात बहुत स्पष्ट बताई है कि आत्माएं अनादि और अविनाशी हैं। जो इस सृष्टि नाटक पर पार्ट बजाने के लिए आई हैं, उनको बार बार इस चक्र के अंदर आना ही है। कोई भी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं होती। मोक्ष माना वो कोई सागर में जाकर के बुदबुदे के समान समाती नहीं है, उसको इस जन्म में एक चाहे कल्प के अंदर एक दो जन्म ही मिले, लेकिन जन्म जरूर लेना पड़ता है। जीवन मुक्त स्थिति, जीवन में रहते बुराइयों से, विकारों से, बंधनों से मुक्त स्थिति रहे, उसकी प्रैक्टिस बाबा हम बच्चों को कराता है। लेकिन सबसे पहले हम इस बात को लेंगे कि हम सबकी जवाबदारियां क्या हैं। ऐसे तो नहीं कोई व्यर्थ की बातों की जवाबदारियां हमने अपने ऊपर उठा ली हैं। आप सब अपनी जिम्मेवारियों को जानते हैं अच्छी तरह से, मेरी जिम्मेवारियां क्या हैं, और यदि जिम्मेवारियां जानते हैं तो संभालते कैसे हैं वो भी आप सब जानते होंगे। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी कौन सी है, कौन बोलेगा? हमारी सबसे पहली जवाबदारी जिम्मेवारी कौन सी है? जी, बाबा की श्रीमत पर चलना, ठीक है। और भाई लोग बोलो, मुरली मिस नहीं करना। और ऐसी बात बताओ जो लगे कि मेरी जिम्मेवारी इसको मुझे निभाना ही है, संपूर्ण ब्राह्मण बनना। जी, आप पीछे से क्या बोले? लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखकर चलना। और क्या बोले बहने, कुछ बोले? हाथ उठाओ, हाँ बोलो। चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करना, बोलो क्या बोले? सबको संतुष्ट करना और खुद भी संतुष्ट रहना, ठीक बोले हैं? हम सब की पहली जवाबदारी है अपने आप को सतोप्रधान बनाना। बाबा ने हम सबको ये समझ दी है कि सृष्टि चक्र के अंदर हम सब पार्ट बजाते बजाते अभी अंत के समय में तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच चुके हैं और ट्रांसफर होकर के तमो से तमो प्रधानता आई, अब फिर से सतो प्रधान स्टेज को प्राप्त करना है। और ये जिम्मेवारी निभाने के लिए जो आप सबने कहा, श्रीमत पर चलना है, संतुष्ट रहना है, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का पालन करना है, एक शब्द में मैं इसको कहूं कि मुझ आत्मा को अपना मित्र बन करके रहना है, अपने साथ मित्रता करनी है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है, कोई किसी की शत्रुता नहीं है किसी से, कोई कोई को परेशान नहीं करता, अपना ही स्वभाव अपने आप को परेशान करता है। लगता है ऐसे आपको कि हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसे स्वभाव हैं जो खुद ही आत्मा को अंदर ही अंदर परेशान करते रहते हैं, इसलिए मुझे अपने आप से मित्रता करनी, मित्रवत व्यवहार करना है। और सबसे बड़ी मित्रता ये है अपने लिए शुभ चिंतन करना, श्रेष्ठ चिंतन में रहना, अपने आप को ऊंची स्टेज पर स्थित रखना, साधारणता हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, ये अपने आप से हरेक को मित्रता करनी है। और जो ऐसी स्टेज में रहते हैं, संतुष्ट मणि बन करके संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट रहते हैं और बाबा से संतुष्टता का वरदान ले लेते हैं, ये सबसे पहली हम सब की अपनी जवाबदारी है। और इसके लिए अपने आप को ही समय देना होता है। कोई कहे कि मेरे पास तो इसके लिए समय ही नहीं है, तो बाबा कहता है ये आपके ऊपर है, समय है या नहीं है। और किस विधि से अपनी सतो प्रधान स्टेज बनानी है वो आपको खुद ही रास्ता तय करना है। बाबा केवल विधि बताता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, करना आपको है। इसलिए मैं अपने आप को सतो प्रधान बनाने के लिए, माना संपूर्ण पावन बनाने के लिए, किस तरह से विधियां अपनाऊं, क्या क्या करूं, कोई ऐसे कड़े संस्कार हैं, कोई ऐसी आदतें हैं जो मुझ आत्मा को परेशान करती हैं, उन आदतों को मैं कैसे समाप्त करूं, उसके लिए अपने आप से बातें करना, अपने आप को तपाना, अपने आप से संकल्प लेना, व्रत लेना, ये सब खुद करना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर हम बाबा की मुरली रोज सुने, कई बार 10 साल 15 साल 20 साल मुरली सुनते सुनते भी खुद में परिवर्तन दिखाई नहीं देता, संस्कार नहीं मिटते, ठीक है ऊपर से लगते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जीवन है, लेकिन कई ऐसे गुप्त संस्कार अंदर अंदर आत्मा को परेशान करते हैं, परिवर्तन सहज नहीं होते। माना मैंने उसको समाप्त करने के लिए गहरी तपस्या नहीं की है, दिल से महसूस नहीं किया है, ये गलत है। गलत को जब तक किसी ने महसूस नहीं किया गलत है, तब तक उसको चेंज नहीं कर सकता। तो मित्रता तो ये है कि हम एकांत में बैठ करके अपने आप के टीचर बन करके, अपने आप को पढ़ा करके हम स्वयं को बदल लें। जो ऐसे संस्कार आपको दिखाई दें कि मेरे मार्ग के अंदर ये रुकावट डाल रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं, उनको महसूस करके, संकल्प में दृढ़ता ला करके, तपस्या करके, सहन करके उसको समाप्त करना, ये है आत्मा अपना मित्र। तो सबसे पहली जवाबदारी हम सबकी यही है, बाकी सब जवाबदारियां हैं और उनको निभा भी रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। और दूसरी फिर जवाबदारी आती है, बाबा अपने बच्चों को बहुत उम्मीदें रखता है कि मैंने विश्व परिवर्तन के लिए ये जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ को सफल बनाने में, यज्ञ को आगे बढ़ाने में, यज्ञ को निर्विघ्न रखने में ये मेरे बच्चे मेरी राइट हैंड भुजाएं बने, बाबा की उम्मीदें हैं। जवाबदारी बाबा अपने बच्चों को सौंपता है और वारिस और जिज्ञासु इन दोनों में अंतर भी बताता है। वारिस बच्चे कौन हैं और जिज्ञासु कौन है। तो आप सभी क्या समझते हो? मैं तो समझता हूं आप एक एक बाबा के वारिस बच्चे हैं। वारिस किसको कहा जाता है? घर के बच्चे जो होते हैं वो समझते हैं कि यहाँ पर किस चीज की कमी है, किस चीज की जरूरत है, वो फौरन अपने आप बिना पूछे ही भर देते हैं। कहीं नुकसान हो रहा हो तो अपने आप ही समझते हैं कि हमारा भी कर्तव्य है इसको ठीक करना, लेकिन कई बार एक बैलेंस खो देते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। और वो बैलेंस बाबा ने हम सबको सिखाया है। अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए बहुत सुंदर बैलेंस है, बालक और मालिक। अगर हम विद्यार्थी हैं, हमको बाबा ने अपना बच्चा बनाया है, हम बालक हैं, बालक बनकर के बाबा की हर बात को स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हाजी कर रहे हैं, और फिर अगर कोई ऐसी बात दिखाई देती है तो मालिक बनकर के राय भी देते हैं, लेकिन राय देने के बाद राय मानी गई या नहीं मानी गई, वहां पर बालक फिर से बन जाते हैं। मानी जाए या न मानी जाए, अपना कर्तव्य जो है, फर्ज जो है, वो पूरा किया और फिर बालक बन गए। तो जो इस ब्राह्मण जीवन में बालक सो मालिक बैलेंस को जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जवाबदारी निभाते हुए निश्चिंत रह सकते हैं। नहीं तो कई बार कोई स्टूडेंट बनते हैं, थोड़ा समय नजदीक आते हैं, तन मन धन से सहयोगी बनते हैं, और सहयोगी बनते बनते फिर मालिक बनकर के राय देना शुरू करते हैं, और अगर उनकी बात को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, माना नहीं जाता है, तो डिस्टर्ब होकर के बाबा का हाथ ही छोड़ देते हैं। कहते मेरी बात तो यहाँ सुनी नहीं जाती, मेरा इतना अनुभव है, मैं इतना पुराना हूँ, लेकिन मेरी कहाँ सुनी जाती है। इसलिए वहां पर अपने आप को अंदर अंदर डिस्टर्ब करके किनारा कर लेते हैं। बालक सो मालिकपन का अगर बैलेंस चलता है, हम लोग यहाँ रह करके मधुबन के वातावरण में अगर इस बैलेंस को कभी भी भूल जाएं, तो अपनी अच्छी स्थिति नहीं बना सकते। मालिक हैं, यज्ञ के रक्षक हैं, कोई भी बात नीचे ऊपर दिखाई देगी तो हम बताएंगे, कहेंगे, लेकिन अगर वो नहीं मानी गई तो उसके पीछे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने संकल्प नहीं गंवाएंगे, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा, बालक बन जाएंगे। राय देना फर्ज बनता है, राय दिया, बात दिया, बड़ों तक पहुंचाई और हल्के हो गए, वो स्थिति अच्छी बन जाती है। तो ये यज्ञ को निर्विघ्न बनाना, यज्ञ को आगे बढ़ाना, यज्ञ की कोई कमी पेशी है उसको संपन्न करना, भरपूर करना, हमारी सबकी जवाबदारी है। हम सब बच्चे भी हैं, वारिस भी हैं, मालिक हैं। इस विधि से अगर हम चलते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में रह सकते। तीसरी जवाबदारी जो आप सबको मिली हुई है, जिनकी रचना की है, रचयिता का कर्तव्य है उनको सही मार्गदर्शन देना। लौकिक परिवार है, बच्चे हैं, समाज है, उसके अनुसार अपने आप को समझ करके चलाना, उनके अधिक प्रभाव में भी ना आना और उनकी हर प्रकार से संभाल भी करना, परमार्थ और व्यवहार इन दोनों का बैलेंस रख करके। यज्ञ के अंदर बैलेंस है बालक सो मालिक का, और पारिवारिक जीवन में बैलेंस है परमार्थ और व्यवहार का। परमार्थ के लिए जितना हमारा समय है, कोई कहे कि मैं तो बाबा का बच्चा बन गया हूं, मुझे तो बहुत पता है, निश्चय है, लेकिन व्यवहारिक जीवन अगर उसका ठीक नहीं है, सिर्फ बाबा के लिए सब कुछ है लेकिन व्यवहारिक जीवन में कोई भी नीचे ऊपर करता है, तो लोगों की भावनाएं यज्ञ के प्रति अलग प्रकार की नेगेटिव हो जाती है कि पता नहीं इनको क्या सिखाया जाता है, ये लोग बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, ये लोग समाज का ध्यान नहीं देते हैं, ये लोग घर बार का त्याग ध्यान नहीं देते हैं, अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये ठीक ट्रेनिंग नहीं मिलती है। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को हर प्रकार की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। सचमुच अगर विधिवत कोई अपने पारिवारिक जीवन में चले तो कभी भी कोई अंगुली नहीं उठाएगा कि ब्रह्मा कुमारी जैसा सिखाती है। बाबा ने एकदम सरल रीति से जीवन जीना सिखाया है और उस जीवन में बैलेंस से चलना, परिवार पर भी पूरा ध्यान देना लेकिन अधिकार और कर्तव्य, फर्ज अदाई और कर्तव्य में बहुत बड़ा अंतर है। एक छोटा सा मिसाल मैं परिवार वालों को बताता हूं। आप लोगों ने बच्चों को जन्म दिया, प्रवृत्ति में रहते हैं आप माँ बाप, ज्ञान में आ गए और आप हमेशा यही भावना रखते हैं कि मेरे बच्चे मेरा कहना माने, जैसा मैं चाहता हूं वैसा करें, गाइड करते हैं उनको, बीच बीच में सेंटर पर ले आते हैं, उनसे ये चाहना रखते हैं कि बाबा के बच्चे बन जाएं, अच्छा जीवन बना लें, पवित्र बने, योगी बने, जैसे हम लोगों के जीवन बन गए ऐसे बन जाए। ये हमारी भावनाएं हैं और बताना चाहिए, राय देनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती किसी को ज्ञान में नहीं लाया जा सकता है। और आजकल के इस जमाने के अनुसार भी किसी पर अधिकार रख करके जबरदस्ती करना, ये बाबा की बदनामी होती है। बाबा भी अपने बच्चों पर कोई अधिकार से जबरदस्ती नहीं करता है, बहुत प्यार से कहता है मैं सुख दाता हूं लेकिन मैं सुख देता और लेता नहीं हूं, हूं दुख हरता सुख दाता बाबा को कहा जाता है, लेकिन कहता है ना मैं दुख देता हूं ना मैं सुख देता हूं, मैं तो रास्ता बताता हूं, अगर तुम उस रास्ते पर चलोगे तो सुखी हो जाओगे, जो रास्ता मैं बता रहा हूं उस पर जो जितना चलेगा उतना सुखी रहेगा और नहीं चलेगा तो एक शब्द बाबा की मुरली में आता है कि मैं तुमको टिवाटे पर खड़ा करता हूं। टिवाटे समझते, तीन रास्ते जहां मिलते हैं, इधर रास्ता गया, इधर रास्ता गया, इधर रास्ता गया, तीन रास्ते मिलते हैं तो उसको टिवाटा कहते हैं, चार रास्ते जाते तो चौराहा कहते हैं, तो टिवाटे पर मैं तुमको खड़ा करता हूं, संगम युक्त टिवाटा है ये, एक तरफ है दुख धाम। अगर कोई भी श्रीमत की अवज्ञा करेंगे, कोई भी प्रकार के विकारों के अधीन होंगे, वशीभूत होंगे, देहाभिमान में आएंगे तो बाबा जवाबदार नहीं है, वो दुख का अनुभव, विकार हमेशा दुख का अनुभव कराएंगे। और अगर आप श्रीमत के अनुकूल चलेंगे, जो सुखधाम का रास्ता बाबा ने बताया है उस पर चलेंगे, बाबा की श्रीमत का पूरा पालन करेंगे, बाबा की ज्ञान योग की पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देंगे तो सुखधाम माना, कभी भी आत्मा को इस जीवन में भी दुख की अनुभूतियां नहीं होंगी, ये सुख का रास्ता है। और तीसरा, कई आत्माएं हैं जो बिल्कुल शांति का रास्ता चाहती, आएंगी योग करेंगी चली जाएंगी, तीसरा शांति धाम का रास्ता है, उनको ज्ञान योग से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सेवाओं में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा मान करके कुछ समय साइलेंस का अनुभव करने के लिए आएंगी आपके पास। वारिस बन करके रहे ऐसा नहीं है, वो मुक्ति की आत्माएं होती है और लास्ट में ऐसी आत्माएं बहुत आने वाली है जिनको मुक्ति चाहिए, माना बहुत समय तक मुक्ति धाम में रहे, फुल ऑलराउंडर पार्ट नहीं है। तो ऐसी आत्माएं जो मुक्ति चाहने वाली वो भी आ रही हैं, सुखधाम में जाने वाली ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाली भी आत्माएं आएंगी, हैं आप सभी तो उसी में ही हैं। लेकिन अगर कोई मान लो श्रीमत की अवज्ञा ही कर रहा है तो हम समझ जाते हैं, इशारा देते हैं कि ठीक नहीं है, बचाने का प्रयास करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, भले तुमको जो मर्जी करो। तो लौकिक में भी हम सबको इस तरह से परिवार वालों को गाइड करना चाहिए, और जबरदस्ती करेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा होगा, बहुत नुकसान हो जाते हैं उससे परिवार में। इसलिए प्रवृत्ति में सही दिशा दिखाना, मार्ग दिखाना फर्ज बनता है, और नहीं मानते हैं तो ठीक है, तेरा रास्ता इधर है, मेरा रास्ता ये है, तो ये बैलेंस रख करके चलेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशनुमा निश्चिंत स्थिति रह सकती है। अलौकिक में जवाबदारियां बाबा ने दी हैं, सेंटर की हैं, बहनों की हैं, उनके स्वास्थ्य की है, उनके बारे में जो भी बातें होती हैं, जो अनन्य बच्चे बाबा के होते हैं वो हर बात का ध्यान रखते हैं, कोई चीज की कमी न पड़े, हर चीज से मैं बहनों की संभाल करूं, देखभाल करूं, वो भी लौकिक के साथ ऐड हो जाती हैं अलौकिक जवाबदारियां। और चौथी जवाबदारी बाबा ने संगम पर हम सबको दी है, बड़ा विश्व है इसको परिवर्तन करने की, इसमें कोई आत्मा जो हमारे संबंध संपर्क में हो वंचित न रहे ईश्वरीय ज्ञान से, भले वो सुने या न सुने, माने या न माने, हमारा जो कर्तव्य है हम उनको उस बात को बताएं जरूर, परमात्मा के अवतरण के विषय में, उनके इस ज्ञान के विषय में, उनकी जीवन कैसे बना रहे हैं पूरा समझ दे करके। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो उलहना तो नहीं देंगे कि आपको इतना अच्छा मिला, आपने ऐसी जीवन बनाई, आपको भगवान ने पढ़ाया पालना दी, मुझे क्यों नहीं बताया। बाबा कहता उलहना देंगे, बहुत उलहना मिलेगा। इसलिए कर्तव्य है हमारा, फर्ज है हमारी, जवाबदारी है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, मित्र संबंधियों को बाबा का संदेश किसी न किसी रूप में अवश्य दें। और जो विशेष करके नौकरी नहीं लेकिन बिजनेस में रहते हैं, अधिकतर आप सब मैं समझता हूँ बिजनेस से कनेक्टेड हैं, सबसे अच्छा एक साधन मैंने जहां तक देखा है बिजनेसमैन बाबा का छोटा सा शॉर्ट परिचय अपने एक कार्ड पर लिख देते हैं। ऑफिस वाले भी करते हैं, नौकरी वाले भी कर सकते हैं, छोटा सा परिचय, नाम रूप गुण कर्तव्य बाबा का लिख करके, पूरा परिचय लिख करके अपने कार्ड के पीछे थोड़ा सा ज्ञान लिख करके फिर लिख देते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां से संपर्क करें, फोन नंबर या सेंटर का एड्रेस दे देते हैं। एक कर्तव्य है हमारा कि बाबा का संदेश जन जन को पहुंचाया जाए, कोई भी वंचित न रहे, जो हमारे संबंध संपर्क में हो कम से कम उनको हमने जो पाया है उनको बताएं जरूर। विश्व परिवर्तन की बहुत बड़ी जवाबदारी है और बाबा ने अपने बच्चों को ही दी है। एक विधि है कि हम स्थूल रूप में कुछ कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन दूसरी विधि है कुछ समय हम मनसा के द्वारा अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों के द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में मदद करें। कई आत्माएं बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, तड़फ रही हैं। अगर मैं सुख स्वरूप स्थिति में बैठा हूं तो अपने भाई बहनों के प्रति ये मेरी जवाबदारी है कि कुछ समय उनको सकाश दी जाए, लाइट दी जाए। लेकिन मेरा मन भी स्थिर होना चाहिए ना, बहुत अच्छी शांत स्वरूप सुख स्वरूप स्थिति में बैठ करके अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों से वायुमंडल को चार्ज करो, जहां पर जो आवश्यकता है हमारी मनसा उनको मिले पहुंचे। ये कुछ समय हरेक को करना चाहिए, अपने आत्मिक रूप में अपने परिवार के प्रति, भाई बहनों के प्रति ये जवाबदारी है। और साथ साथ इतना बड़ा प्रकृति का इस समय खेल चल रहा है, आप हम सब देख रहे हैं प्रकृति के पांचों तत्व जिनको हमने ही खराब किया है, आत्माओं ने ही उनको दूषित किया है स्वार्थ भावना के कारण, किसी न किसी रूप में अधिक दोहन करने के कारण जल प्रदूषित हो गया, वायु प्रदूषित हो गई, पांचों तत्वों के अंदर कुछ न कुछ हमने अपनी स्वार्थ वृत्तियों के कारण, विकारों के कारण इनको नुकसान पहुंचाया है। प्रकृति आत्मा के लिए थी, प्रकृति जो थी सब, जब हम आत्माएं अपनी सतो प्रधान स्टेज में थी तो वो दासी के रूप में हमारी सेवा करती थी। आज भी अगर कोई बाबा के बच्चे प्रकृति की प्यार से सेवा करते हैं, सेवा माना उसके प्रति बहुत शुभ चिंतन रखते हैं, शांति का दान देते हैं, कोई उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हमारे पवित्र वाइब्रेशन प्रकृति के तत्वों को पावन बनाते हैं। और हर एक आत्मा का ये कर्तव्य बनता है, सबसे पहले पांच तत्वों की प्रकृति हमारे साथ है सदा ही, अगर इस प्रकृति के अंदर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ जाए तो आत्मा इस शरीर में रह नहीं पाएगी। पांचों तत्वों का बैलेंस जब बिगड़ता है, आप सब जानते हैं अगर एक भी तत्व माना जठाग्नि भी अगर ठीक नहीं है शरीर के अंदर, भोजन हजम नहीं हो रहा है, पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, जल तत्व की थोड़ी सी कमी हो गई या दूषित जल पी लिया चला गया अंदर, तो कई प्रकार की बीमारियां पानी पीने से भी हो रही हैं। अगर शुद्ध वायु ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रही है, कम ज्यादा जा रही है या ठीक नहीं मिल रही है, तो भी सांस की अनेक प्रॉब्लम्स हो जाती है। धरती तत्व तो मूल है जिसके ऊपर हम सब खड़े हैं, कोई भी चीज अगर खाने पीने रहने की कहां से मिले, धरती माँ से मिल रही है। अगर कोई भी धरती की चीज को हम ठीक तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो भी शरीर को बेकार कर देता है। तो ये पांचों तत्वों का शरीर तो हम सबके साथ है सदा, इसकी तो सेवा करनी ही चाहिए। करते हैं सभी, संभाल तो करते हैं, स्नान पानी कराते हैं, साफ स्वच्छ रखते हैं, लेकिन आत्मा मालिक है और आत्मा मालिक बनकर के अपनी आत्मिक स्टेज में बैठ करके इन पांचों तत्वों को बहुत प्यार से शांति शक्ति प्रेम पवित्रता का दान दो। आत्मा के गुण हैं और उन गुणों की ही जरूरत है इस प्रकृति के तत्वों को। ये पांच उंगलियां हैं, मैं आपको नंबरवार बता देता हूं। मैं अभ्यास करता हूं एक सवेरे सवेरे जब थोड़ा समय प्राणायाम वगैरह करते हैं। ये तत्व आकाश तत्व का निशानी है, अंगूठा पहला। आकाश को बहुत प्रदूषित किया है, कितनी प्रकार की इसमें गैसें छोड़ दी, कितना प्रदूषण फैला दिया। दूसरा है वायु तत्व, आकाश के बाद वायु तत्व, इस उंगली से निशाने दे रहा हूं मैं। तीसरा है अग्नि तत्व और चौथा है ये उंगली जल तत्व और ये उंगली पृथ्वी। ये पांचों तत्वों का एक बैलेंस है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। इन पांचों तत्वों के आधार से अगर कोई का बैलेंस अच्छा है तो शरीर स्वस्थ रहता है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जवाबदारी, मैं बताता हूं, ये हरेक की अपनी पर्सनल जवाबदारी है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एकाग्र होकर के इन पांचों तत्वों को देवताओं के रूप में आवाहन करके उनको शांति शक्ति प्रेम आनंद की अनुभूति कराना। आनंदित हो रही है सब इंद्रियां, एक एक शरीर का अंग आनंदित हो रहा है, शांति का अनुभव कर रहा है। तो अगर इनका हम प्रयोग करते हैं, 10 मिनट भी योग करते हैं ऐसा, तो ये तत्व भी हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, दुख नहीं देते। और ये प्रकृति जो पांचों तत्वों की वायुमंडल में है, पेड़ पौधे वनस्पति सब कुछ, इनको भी यही शक्ति चाहिए। पौधों को भी टेंशन होता है अधिक जहरीली खादें डाल करके, उनको उनसे अधिक चीजें लेने के लिए जमीन को प्रदूषित कर दिया, पेड़ पौधों पर कीटनाशक दवाइयां डाल करके उनको खराब कर दिया। जो हम उनको खाएंगे स्वीकार करेंगे हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमारा ध्यान रहता है कि जितना हो सके जो किसान है खेती से संबंधित है उनको प्रयोग करना सिखाते हैं कि तुम कम से कम जो खा रहे हो खिला रहे हो उसको कोई भी प्रकार की ऐसी खादें नहीं दो जो जहरीली है, जो आपको और आपके परिवार के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली है। इन तत्वों को सतो प्रधान बनाने में अपना योगदान दो, और अधिक नहीं कर सकते हो तो कम से कम शांति से पवित्रता के वाइब्रेशन पांचों तत्वों को दो, ये आपको मदद करेंगे। ये बहुत जवाबदारी बाबा ने दी है, लेकिन कई बार हम अपनी अपनी जवाबदारियों में बिजी हैं, ये काम है ये काम है ये काम है। और बाबा कई बार कहता है ना कि बच्चों के पास तीन कमियां बाबा कई बार वर्णन करता है, एक आलस्य ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य है, अमृत वेले नहीं उठ रहे हैं, पढ़ाई के समय आलस्य आता है, थकान का अनुभव होता है। दूसरा अलबेलापन है, कौन करता है किसने किया है अभी कौन बना है, दूसरों को देखते हैं अलबेले होकर के। और तीसरी एक बाजी बहानेबाजी, वो बाबा कई बार हस्ती में कहता है सबसे बड़ी बाजी बच्चों को बहानेबाजी आती है, कहेंगे क्या करूं ये हो गया रात को नींद नहीं आई ऐसा हो गया ऐसा। पढ़ाई के लिए योग के लिए अपनी उन्नति के लिए भी बहाने बनाते हैं। तो इन तीनों बातों से अपने आप को मुक्त करके, आलस्य अलबेलापन और बहाना, कुछ समय इन पांचों जवाबदारियों पर अटेंशन देना चाहिए। बैलेंस में अगर रहेंगे तो स्वयं के प्रति भी समय मिल जाएगा, यज्ञ के प्रति भी हमारे अच्छे चिंतन चलेंगे, नई नई प्लानिंग आएगी, ऐसे ही बाबा के कार्य को बढ़ाया जाए, ऐसे यज्ञ की वृद्धि की जाए, ऐसे यज्ञ को निर्विघ्न रखा जाए, लौकिक और अलौकिक जो भी है उनकी भी संभाल, पूरा उनको ध्यान रख करके उनको ही पालना देनी है, फिर विश्व के प्रति और प्रकृति के प्रति हमारा कुछ समय इनके लिए होना चाहिए। तो ये सब जवाबदारियां बाबा ने दी हैं, हरेक की हैं, ध्यान रखना। कोई कहे मैं फ्री हूं तो बाबा कहता तुम फ्री हो माना, तुमको अपनी जवाबदारियों का एहसास नहीं है। अगर जवाबदारियां हैं तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, इधर उधर व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, इधर की बातें उधर की बात करने का समय नहीं है। तो बाबा ने बहुत बड़ी जवाबदारी दी है, तो जवाबदारियों को अनुभव करते हुए अब संभालना है सब कुछ, करना है सब कुछ, छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम इस कर्म क्षेत्र पर आए हो कर्म करने के लिए, तुम कर्म सन्यासी नहीं हो। हमारा सन्यास नहीं है, जब तक इस शरीर के अंदर हैं हम कर्म क्षेत्र पर हैं, कुछ न कुछ कर्म करना है, लेकिन कर्म करते बंधन में मैं आत्मा न बंध जाऊं। कर्म ही बंधन बना रहे हैं। सतयुग के अंदर कर्म संबंध थे, सब संबंधों में रहे हम सब, कोई संबंधों को छोड़ा नहीं, लेकिन वो संबंध कभी बंधन का अनुभव नहीं कराते, दुख का अनुभव नहीं कराते थे, बहुत न्यारी और प्यारी स्टेज थी। सबसे बड़ा दुख हुआ है इस समय कलयुग के अंदर मैं और मेरेपन का, मैं जो थोड़ा भी कुछ करता है उसको अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है, वर्णन में, बोलचाल में, मैं कुछ हूं। इसलिए ये सबसे बड़ा बंधन है। जीवन मुक्त स्टेज हम इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को हम सब ने साकार में भले नहीं देखा, लेकिन 45 साल से अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा के पार्ट को हम सब अनुभव कर रहे हैं। बाबा बच्चों को खूब प्यार से पालना दे रहा है, अव्यक्त वतन में होते हुए भी, हर हिसाब किताब से मुक्त होते हुए भी एक एक बच्चे पर इतनी मेहनत कर रहा है, पावन बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए। साकार ने क्या किया वो प्रैक्टिकल सब बातें अव्यक्त रूप में हम सबको सुनाई हैं। बच्चों को संभाला, इतना बड़ा परिवार था, इतने सारे बच्चे थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन बाबा सब कुछ निभाते हुए भी एक पर इतना विश्वास था, इसलिए खुद बेगमपुर का वास सारा निश्चिंत जीवन रही, किसी में फंसा नहीं, न फंसाया न फंसा, कभी फंसने नहीं दिया। बाबा से बहुत बच्चों का प्यार हो गया था, देही बाबा कहता था बच्चे इस देहधारी से प्यार करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, इसको फोटो भी नहीं, इसका निकालो। अपने में फंसने नहीं दिया लास्ट तक, कर्म सब किए, पालना किया, प्यार से पढ़ाया सिखाया, सब जवाबदारियां यज्ञ की संभाली, जितने पत्र आए खुद लिखा, कोई पर छोड़ा नहीं, सब बच्चों को सब जवाब, बच्चे आएंगे उनके लिए मकान बनाना है, उनके लिए ये करना है, उनके लिए इतना सब, बहुत साकार रूप में बाबा ने सब जवाबदारियां खुद संभाली, लेकिन कर्मातीत बन गया और बिल्कुल जीवन मुक्त स्टेज में रहा। कर्म ही आत्मा को बंधन में बांधते हैं, कर्म की छूट सबको दी है, कर्म करो, लेकिन कर्तापन का भान नहीं रहना चाहिए कि मैंने किया, मैं नहीं करता तो कौन करता, ये मेरी जवाबदारी है। बाबा कहता तुम उस जवाबदारियों के बोझ को मेरे को अर्पित कर दो, कर्म करो और कर्म करके बाबा को समर्पित करो। बाबा आपने बहुत अच्छा करा लिया, मैंने क्या किया, मुझे क्या आता था, प्रभु देन। बाबा ने कहा अगर कोई विशेषताएं हैं तो प्रभु देन है, और उस प्रभु देन को मैं कह देना ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा पाप है। बाबा अगर मेरे से कुछ करा रहा है, उसका कार्य चल रहा है, मैं उसमें कुछ मदद कर रहा हूं, बाबा करावनहार करा ले, मैं उसके काम में आ जाऊं, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। तो अगर जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव करना है, माना कोई भी कर्म का हिसाब किताब न बने, सतयुग के अंदर कर्म अकर्म होते थे, क्यों संगम की प्रारब्ध हम लोग खाते थे। कर्म किया, किया सब कर्म, लेकिन उसका भान नहीं था कि मैं कर रहा हूं, प्रारब्ध इस समय की भोग रहे थे, कर्म अकर्म हुए। द्वापर शुरू होते ही जब आत्मा अपने समान को, अपने स्टेज को भूली, बॉडी कॉन्शियस में आई, तो कर्म विकारों के कारण, देहाभिमान के कारण विकर्म बन गए। और वो विकर्म करते करते जब फुल पाप कर्म बन गया करके, तब बाबा करके श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाता है। संगम युग पर हम सब श्रेष्ठ कर्म से अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। भाग्य की रेखा खींचने की कलम जो है वो श्रेष्ठ कर्म है। कोई कितनी भी लंबी भाग्य की रेखा संगम पर बना सकता है, हर एक को बाबा ने कलम दी है। अब उस कलम को हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उस श्रेष्ठ कर्म करें और कर्म करने के भान से परे रहें, ये कला सीखनी होगी। अगर जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव करना है, जैसे आप सब देखते हैं बाबा जब आते हैं, अव्यक्त बाबा को सबने देखा है, कितना बाबा प्यार करता है, ऐसे लगता है जब प्यार का सागर आ गया डुबो देगा, एकदम नैनों से, वाणी से प्यार, एकदम प्यार उछलता है, दिखाई देता है। लेकिन बैलेंस कितना है, एक सेकंड में जैसे दृष्टि देता है, न्यारा हो जाता है। कौन सा बैलेंस? न्यारे और प्यारेपन का बहुत अच्छा बैलेंस है। कच्चा कुछ किसी बच्चे को हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, कोई नुकसान हुआ है, कुछ कुछ हुआ है, बाबा को सुनाया जाता है, पता तो सब बाबा को है, जाने जाना नहार है, लेकिन फिर सब साकार में सुनाते हैं तो साक्षी होकर के सुनता है, मुस्कुराता है, उसके प्रभाव में नहीं आता है। तो कर्म किया जाए, कर्म क्षेत्र पर हम हैं, हम जीवन में हैं, लेकिन जीवन में कर्म करते हुए कोई भी कर्म अपने बंधन में न बांधे, बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। बहुत न्यारा प्यारा बन करके कर्म करो, और किया और फिर बाबा को समर्पित कर दो, बाबा आपने करा लिया, वाह मेरा भाग्य वाह। तो भाग्य है हमारा जो हमको श्रेष्ठ कर्म करना संगम पर बाबा ने सिखाया है। दो स्मृतियां बार बार इमर्ज रहे हैं कर्म करते समय। एक स्मृति है कि मैं आत्मा करावन हार बन करके इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूं, श्रेष्ठ कर्म करने की कला जो मुक्त स्टेज का अनुभव कराएगी। अधीन नहीं होंगे, कर्म करेंगे न्यारे बन करके, कर्म किया और न्यारे हो गए। करावन हार आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। और दूसरी स्मृति में आता है कि बाबा करावन हार है, मैं करनहार हूं। कोई भी कर्म करने जाओ, एक सेकंड के लिए ये स्मृति इमर्ज करो, बाबा तू करावन हार है, मुझ आत्मा से जो कराएगा वो अच्छा ही होगा, मैं आत्मा करनहार हूं, करावनहार आप हो। क्या होगा इससे? कभी भी मैंपन का अभिमान नहीं आएगा। मैंपन के अभिमान के कारण ही विकर्म हो रहे हैं, बंधन बन रहे हैं। कोई भी हिसाब किताब जो बनते हैं उसके दो कारण होते हैं। एक कारण है कि कोई आत्माएं जिनको मैं सुख दे रही हूं, कोई कर्म से सुख दिया और सुख देते देते वो आत्मा मेरे ऊपर प्रभावित हो गई, मेरे ऊपर प्रभावित हो गई, या मेरे को कोई ने सहयोग दिया तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया, तो बहुत अच्छा सहयोगी है ये, तो बहुत अच्छा स्नेही है ये, तो बहुत अच्छा मददगार है, उसकी अच्छाई मुझे दिखाई देने लगी और दूसरों के प्रति थोड़ी सी, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। अगर कोई आत्मा किसी की अच्छाई की तरफ विशेष प्रभावित हो जाती है तो भी बंधन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसकी याद सताने लगती है। बीच बीच में बाबा को याद करते करते वो आत्मा भी सामने आ जाती है, उससे बंधन बन जाता है। जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव करने के लिए हर आत्मा की अपनी विशेषताएं हैं, जो जैसा कर रहा है बहुत अच्छा भाग्य बना रहा है, किसी की विशेषताओं से मैं प्रभावित न हो जाऊं, ध्यान रखना। सबके साथ पार्ट बजाओ, कितना भी अच्छा कर रहा है अपना भाग्य बना रहा है, मैं उसके ऊपर फिदा न हो जाऊं कि इसके बिना तो यज्ञ नहीं चलेगा, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, इसके बिना ये टीचर नहीं होगे तो हमको कौन पढ़ाएगा। इसी यही है, यही एक को अगर हम नजरअंदाज नजर में ले आते हैं तो मैं समझता हूं उसके साथ हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है। लेना देना, उठना बैठना, बातें करना, वही अच्छा लगने लगता। विशेष व्यक्ति पर प्रभावित होना माना अपना हिसाब किताब क्रिएट करना। और किसी से स्पेशल कोई अच्छी नहीं लग रही संस्कारों में व्यक्ति, उसके प्रति नफरत कर लेना, घृणा कर लेना, उससे वैर रखना, उससे बात नहीं करना, वो आए सामने तो एकदम मुंह मोड़ लेना, किनारा कर लेना, ये भी एक नया हिसाब किताब अलग प्रकार का जुड़ जाता है। जरा भी किसी से ऐसी अगर भावनाएं बन गई, इसलिए एक बहुत अच्छा स्लोगन पहले का बना हुआ है दुनिया में, कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। अगर किसी से स्पेशल दोस्ती हो गई तो भी बहुत नुकसान करती है। जगदीश जी ने एक बड़ा रमणीक लेख लिखा था एक बार, भगवान तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूंगा। बहुत रमणीक लेख था। दुश्मनों के लिए तो बाबा ये कहता है, अगर मान लो कोई निंदा आपकी कर रहा है तो आपका अटेंशन खिंचवा रहा है, वो तो सबसे बड़ा तुम्हारा मित्र है। तुम उससे नफरत कर रहे हो लेकिन वो तुम्हारा मित्र है, क्योंकि तुम्हारी कमियों को कमजोरियों को कम से कम पता तो चलने देता है। वो तो दोस्त है, वो तो छिपाता रहता है, बताता ही नहीं है मेरे अंदर कुछ है। कई बार दोस्ती बहुत नुकसान करती है। संग में, सहेलियों के संग में, मित्रों के संग में बैठना उठना, पर चिंतन पर दर्शन, अनेक प्रकार के नए नए हिसाब किताब बना देता है। खाना पीना, व्यवहार, आना जाना, पार्टीबाजी, गुटबाजी, बहुत सारी बातें दोस्ती में हो जाती हैं। इसलिए जीवन मुक्त स्थिति में रहने वाली आत्माएं सबको एक नजर से देखती हैं, समदृष्टि, समान दृष्टि। सब बाबा के बच्चे हैं, सब अच्छे हैं, सबकी विशेषताएं हैं। बाबा ने अपने यज्ञ में हर बच्चे की विशेषता को यूज किया है, हर बच्चे की विशेषता, किसी एक के ऊपर नहीं जवाबदारी दी, लेकिन सबकी विशेषताएं यूज करके इतने बड़े यज्ञ को चला रहा है, गुप्त रीति से उसका गाइड कर रहा है। अगर एक बच्चे की कोई कमियां ही कमियां दिखाई देती हूं तो बाबा को अच्छा लगेगा, ये सब कमियां ही कमियां इसके अंदर। बाबा कहता नहीं बच्चे, अगर किसी बच्चे में 35 अवगुण में एक भी गुण है, माना 36 माने जाते हैं गुण, 36 में 35 अवगुण में एक गुण है, 35 अवगुण है एक गुण है, तो भी बाबा उस एक गुण से उस आत्मा को सेवा में लगा करके गुणवान बना देता है। ये बाबा की विशेषता है। एक गुण देखा, हम लोगों में कौन से गुण थे, कोई एक गुण देख लिया, हां जी किया, ये भी गुण था, हां जी किया, सब विशेषताएं भर दी। विशेषताएं बीज हैं, और इस बीज को अगर हम सेवा में लगा दें, एक बीज है, हिम्मत का है, निश्चय का है, दृढ़ता का है, सच्चे दिल की भावना का है, यज्ञ में सफल करने कराने का है, कोई भी तो गुण है। ऐसा तो नहीं है अभी इतने सब बच्चे बैठे हैं कोई कहे मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ऐसा कोई बैठा हो तो हाथ उठाओ, जिसके अंदर कोई सोचता हो मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है। भगवान की अगर नजर पड़ी है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसमें कोई विशेषता ना हो। और अपनी विशेषताओं को खुद ही खुद पहचानना, और पहचान करके बाबा के इस रुद्र यज्ञ में, नई दुनिया की स्थापना में उस विशेषता को लगा देना। अगर विशेषताएं बाबा के काम में लग जाएंगी तो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आएगी। इसलिए कोई में भी अधिक विशेषताएं हैं ठीक है, उसका भाग्य है, भगवान ने इसको सब विशेषताएं दी हैं, कभी भी उससे रीस रेस नहीं करनी, नहीं तो कई बार दूसरों को आगे बढ़ता देख करके खुद दुखी होते रहते हैं। सबसे बड़ी बीमारी ब्राह्मण परिवार में कई बार ईर्ष्या के रूप में प्रवेश कर जाती है। कोई थोड़ा सा नामाचार होता है, कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है तो कोई थोड़ा दादी स्टेज पर बुला लेती, नाम ले लेती, तो दूसरे लोगों को लगता है अरे वो क्या करता है, वो तो ऐसा ही है, मैं तो इतना करता हूं। उसकी प्रशंसा में वो प्रसन्न होने की बजाय दुखी हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, मुझे किसी से भेंट नहीं करनी, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, नहीं तो वो भी कर्मों का खाता बन जाएगा, मुक्त स्टेज का अनुभव करने नहीं देगा। मुक्त स्टेज का अगर संगम युग पर अनुभव करना है तो हरेक का भाग्य है, भगवान के घर में अपनी विशेषताओं को यूज कर रहा है, जो जैसा करता है अपना अपना बना रहा है और बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। हरेक की विशेषता इस भगवान के काम में लग जाए, ये बहुत बड़ा भाग्य है। किसी से भेंट नहीं करो, किसी से ईर्ष्या नहीं करो, और जितना कर सकते हो खुद कर लो, नहीं तो बाबा के कार्य में मनसा से सहयोगी बनो। तो ये जीवन मुक्त स्टेज के लिए, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से वैर, विशेषताएं देखो, विशेषता देख करके हर एक विशेषता को अपने में धारण करो, विशेष आत्मा बन जाओगे। साथ साथ जीवन मुक्त स्टेज के लिए 5-6 बातें मैं आपको अंडरलाइन कराता हूं, ध्यान रखने की स्टेज बात है। इस समय नाटक चल रहा है और बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, पार्टधारियों को देख करके आत्माएं कई बार विचलित हो जाती। बहुत ज्ञानी है, बहुत योगी है, उसको हम देखते हैं और जब देखते हैं, अरे इसके अंदर भी ये कमी है, ये भी कमजोरी है, कमजोरी पर नजर जाते ही हमारी भावनाएं चेंज हो जाती। इसलिए बाबा ने हम सबको साक्षी दृष्टा स्टेज में रहना एक बहुत बड़ा हमारा गुण है। हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा बन करके देखो। साक्षी माना एक है न्यारा, न्यारा अलग चीज है, न्यारा बनना है देहभान से, परिवार से नहीं, परिवार से किनारा हो जाएगा, नहीं तो न्यारा बनना है देहभान से, बॉडी कॉन्शियस से, और साक्षी बनना है परिवार में हरेक के पार्ट को देख करके। कोई का बहुत अच्छा पार्ट है, सुख वाला पार्ट है, और कोई का एकदम दुख देने और दुख लेने का पार्ट, दोनों के पार्ट को देख करके मेरी स्टेज दृष्टा रहे, ये भी अच्छा पार्ट, इसमें भी कुछ भला है, इसमें भी कुछ कल्याण है, मैं उस पार्ट को देख करके विचलित ना हो जाऊं। नहीं तो अगर विचलित हो गए, स्थिति नीचे ऊपर हो जाएगी, मुक्त स्टेज का अनुभव नहीं होगा। खुश नसीब हूं, खुश नुमा हूं, उस स्टेज का अनुभव नहीं होगा। इसलिए त्रिकालदर्शी स्टेज, साक्षी दृष्टा स्टेज, और फिर दृष्टांत स्वरूप, मुझे दृष्टांत बनना है, हमारा दृष्टांत बाबा दूसरों को दे सके। आप सबकी प्रवृत्ति ऐसी हो, एक एक का परिवार ऐसा हो जो बाबा चैलेंज करके बताए कि अगर बाबा जिस तरह का चाहता है मॉडल अगर देखना हो तो इस परिवार को देख के आ जाओ, इस परिवार को देख के आ जाओ, कैसा मॉडल चाहता है बाबा, उसका सैंपल गृहस्थ आश्रम। आज गृहस्थी समझते समझते आश्रम अलग हो गए, गृहस्थी अलग हो गई, लेकिन हमारे हर घर गृहस्थ आश्रम बन जाए। आश्रम माना अगर उस घर में कोई प्रवेश करे तो उसको आश्रय मिल जाए, शांति मिले, प्यार मिले, सुख मिले, आराम मिले, उसको आश्रम कहा जाता है। तो यहां जो बैठे हैं, जो समझते हैं कि मेरे घर आश्रम समान है, हाथ उठाओ, देखें तो कितने हैं, बस बाकी अभी धीरे धीरे, ऐसे क्यों उठाते हैं, ऐसे उठाओ ना, नशे से बनाया है। जिनके परिवार पूरे पूरे ज्ञान में चलते हैं उनके आश्रम बनाना सहज है। जिनके घर में कोई एक नहीं चलता, दो नहीं चलते, तीन नहीं चलते, माताएं अकेले चल रही हैं, भाई नहीं मानता है, तो कैसे आश्रम बनाएंगे। गृहस्थी घर और आश्रम में अंतर है ने? आज हम गृहस्थी घरों में अगर जाते हैं तो सब चीजें अव्यवस्थित, कोई व्यवस्थित दिखाई नहीं देती। और अगर बाबा के अच्छे घर हैं, आश्रम समान बनाया है उन्होंने, वहां की स्वच्छता, वहां की पवित्रता, वहां का अच्छा वातावरण, वहां की अच्छी वाइब्रेशन, ऐसा खींचते हैं जैसे हम कोई सेंटर पर आ गए। बाबा के बच्चों ने भी अपने घर ऐसे सुंदर आश्रम बनाए हैं। तो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों का हर घर सुंदर आश्रम बन जाए, आश्रय मिले, शांति मिले, प्यार मिले, सुख मिले। और आश्रम बनाने के लिए बाबा ने हम सबको 5 बातें सिखाई हैं। सुबह से रात तक के लिए। पहली स्मृति में आंख खुलते ही मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं दादा दादी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, वो स्मृति नहीं, मैं बच्चा हूं, आत्मा बच्चा है, बाबा की जैसे गोद में मेरा नया जन्म हुआ, आंख खुली, मैं उस घर से इस साकार में पाठ बजाने के लिए आज अवतरित हुआ हूं, मेरा जन्म आज ही हुआ है, कल क्या हुआ भूल जाओ। अगर रोज को अपनी स्थिति को बहुत न्यारा प्यारा अच्छा बनाना है तो सवेरे सवेरे मैं बच्चा हूं, बाबा की गोदी का बच्चा हूं, बाबा की आज्ञाकारी हूं, सपूत हूं, और बस ऐसे बाबा से मीठी मीठी रूरियान करो। फिर दूसरी स्मृति में मैं स्टूडेंट हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं, भगवान मुझे डायरेक्ट पढ़ा करके देवता बना रहा है। तो गॉडली स्टूडेंट का एक नशा, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये स्मृति रहती है तो भी ग्रस्तीपन का भान नहीं रहता। मैं ग्रस्ती हूं, बहुत ही जवाबदारियां, ये काम, ये चीजें, ये बंधन, सबसे न्यारा है वो स्टूडेंट, बेस्ट लाइफ है उसकी। तीसरी स्मृति में कर्म क्षेत्र पर मैं विजयी योद्धा हूं, कर्म क्षेत्र है, विजयी हूं, युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में स्थिर। अगर सचमुच कोई बात आएगी, बाबा मेरा साथी है, सर्वशक्तिमान हूं, बाबा के साथ हूं, विजय मेरा जन्म से अधिकार है, पास हो जाएंगे, बातें तो आएंगी। तमो प्रधान वातावरण है, तमो प्रधान बुरी गंदी दृष्टि वाले लोग हैं, किस प्रकार के लोगों का व्यवहार है सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनमें हमारी स्थिति बिगड़ न जाए। अगर विजयी योद्धा की स्मृति में रहेंगे तो युद्ध में हार नहीं होगी, लेकिन बाबा के साथ से विजयी बन करके रहेंगे। चौथी स्मृति में मैं यात्रा पर हूं, रूहानी यात्री हूं, हर पल ये स्मृति अगर रहे तो यात्री का कभी भी कहीं भी अटैचमेंट नहीं होती। यात्रा पर जब जाते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, यात्रा पर जाने वाले भक्त लोग बहुत श्रद्धा से जाते हैं। हम लोग एक बार गए थे वैष्णो देवी, ऐसे दर्शन, हमने कहा चलो देखें मंदिर में क्या होता है। करीब 12-14 घंटा सीढ़ियां चढ़ चढ़ के लोग ऊपर आते हैं यात्रा पर वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। क्या बोलते रहते हैं, जय वैष्णो देवी, जय वैष्णो देवी, जय वैष्णो देवी, इस शब्द के सिवाय और कोई शब्द उनके मुख से नहीं निकलता, और इसी शब्द से इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां क्रॉस करते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, थकते भी नहीं है और पीछे देखते भी नहीं। यात्री माना पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, आ जाओ सब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं नहीं रुकने वाला तुम्हारे लिए। आप सभी भी एक सदा स्मृति में रखो, बाबा ने मुझे यात्रा पर बिठाया, हम यात्री हैं, बैठे यहां हैं, लेकिन यात्रा हमारी चालू है। यात्रा पर पवित्र रहते हैं, यात्रा पर एक भगवान की स्मृति में रहते हैं, यात्रा में कोई देहधारियों से लगाव नहीं होता, और यात्रा में बहुत जवाबदारियों की टोकरी सिर पर नहीं होती, हल्के रहते, छोटा सामान, थोड़ा सामान, हाँ पानी थोड़ा ले लेंगे, थोड़ा हल्का सा नाश्ता ले लेंगे, और बहुत हल्के होंगे तो यात्रा फास्ट कर सके। तो बहुत सारे बोझ लेकर के चलना नहीं है, सब बाबा की गोदी में दे दो, बाबा तुम जान अभी, मैं तेरा बन गया, लाइट होकर के यात्रा पर रहो, तो मैं रूहानी यात्री हूं। फिर पांचवी बात एक बहुत स्मृति में रखने की है, मैं खुदाई खिदमतगार हूं, खुदा ने स्वयं भगवान ने मुझे ये खिदमत दी है, सेवा दी है, मैं उसके लिए हूं। एक हमारा बहुत अच्छा राइटिंग में स्लोगन आता है कि हम गॉडली सर्विस ओनली, केवल गॉडली सर्विस के लिए हैं संगम पर, भले आपके पास सब प्रकार की सर्विस है। बाबा कहता सब काम करते हुए ये स्मृति रखो, ये भगवान ने मुझे काम दिया है, परिवार भी संभालने की ड्यूटी उसने मुझे दी है, मैं इस ईश्वरीय सेवा के लिए हूं। इनको संभालने की ड्यूटी अगर मुझे मिली है तो ये भगवान की तरफ से मिली है, इसलिए मैं संभाल रहा हूं। ये ट्रस्टीपन की भावना जिस दिन आ जाएगी, बहुत एकदम आप मुक्त स्टेज का अनुभव करेंगे। जब तक कर्म बंधनों की रस्सियां बंधी हुई हैं, ट्रस्टी नहीं समझते मेरा 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 मेरा, तब तक बंधन है, तब तक दुख है, बोझ है। लेकिन मैं आत्मा अगर जीवन मुक्त स्टेज में रहना चाहती हूं, बाबा ये सब तेरा, ये सब तेरा, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, कुछ नहीं मेरा। बाबा ने जिस दिन से त्याग किया, जिस दिन से बाबा ने समर्पित किया अपने को, पैसे को भी हाथ नहीं लगाया, कोई चीज में ये नहीं कहा मेरा है, ये सब बच्चों का है या बाबा का है, बच्चों का है या बाबा, इतना न्यारा हो गया। तब वो जीवन मुक्त स्टेज में रहा। तो हम सभी भी प्रवृत्ति में रहते हुए इतने न्यारे प्यारे साक्षी दृष्टा दृष्टांत रूप त्रिकालदर्शी बनकर जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव कर सकते हैं। ये सिर्फ ज्ञान में नहीं सुना रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा का हमारे सामने दादियों का मिसाल है कि इतनी सब सेवाएं करते हुए भी वो किसी बंधन में बंधी नहीं, किसी को अपना नहीं समझा, किसी ममत्व रख करके किसी स्थान से बंधी नहीं, किसी सेंटर से बंधी नहीं, किसी चीज से नहीं अपने आप को बांधा, सदा मुक्त स्टेज में रह करके कर्मातीत बन गए। तो हम सभी भी फॉलो फादर मदर को करते हुए ऐसी स्टेज बनाएं, जवाबदारियां संभालें, लेकिन बहुत लाइट का ताज है। जवाबदारियां माना भारी भारी हो गया, बहुत टेंशन पैदा हो गया, नहीं, ये जवाबदारियां हमको हल्का बनाने वाली है। ठीक है, ओम शांति। अभी प्रश्न उत्तर का क्लास थोड़ी देर चलेगा, जितनी देर चलेगा उतना ठीक है, फिर योग करना सभी। ठीक है,
ओम शांति। सवेरे हमने दो प्रश्न का जवाब सुना, अभी पांच प्रश्न लिख के दिया हुआ है, उसको भी हम सुनेंगे। ये पहला प्रश्न योग के संबंधित है। सवेरे अमृत वेले योग करते हैं, उस समय में झुटके आते हैं तो वातावरण खराब हो जाता है, क्या हम उस समय में उठ करके जाके योग नहीं करके बाद में करें, या तो नियम है इसलिए हमें बैठना चाहिए, क्या इसका आपका विचार है? कह रहे
ऐसा है कि कई बार अमृत वेले के योग का महत्व तो इतना हम नहीं देते। वातावरण में बहुत सारे लोग नींद कर रहे होते हैं, जब 80% लोग नींद कर रहे हैं, 20% अगर जग रहे हैं, तो उनके सोने का इफेक्ट तो आता है वाइब्रेशन में, और थोड़ी देर बैठते हैं तो हमको भी वही सुस्ती आने लगती है, झुटका आने लगते हैं। बाबा कहते हैं थको मत, अपने चिंतन को बहुत बहुत नशे में ले जाओ। अमृत वेले को अगर अच्छा बनाना है तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प इमर्ज करो, शून्य संकल्पों में नहीं जाओ। एक ही विधि अपना करके बैठते हैं, मैं तो शांत स्वरूप हूं, मैं तो पवित्र स्वरूप हूं, जैसी विधि पहले बताई जाती है उसी विधि को लेके बैठते हैं, तो फिर शांति धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि वो वातावरण नींद का है, इसलिए अच्छे अच्छे गीत बजाओ, अच्छे फ्रेश होकर के बैठो, समय पर सोना और समय पर उठना। कई बार अगर हम रात को 11 बजे 12 बजे तक कोई टीवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई बात करते हैं, हमारी टाइम पर अगर नींद नहीं है तो अमृत वेला कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए बाबा ने बड़े अच्छे नियम बनाए हैं। हमारी दादी परदादी कहती थी 10 माना बस, 10 माना बस, उसके आगे नहीं। 10 बज गया, आप थोड़ा सा अपने आप को समेट लो, फ्रेश होकर के बाबा से गुड नाइट करके अपना चार्ट दे करके राजकुमारी की तरह बाबा की गोदी में सो जाओ। उठो, बाबा आपकी सजनी हूं। रात में परिवर्तन हो गया, रात को गीत बजा सो जा राजकुमारी, और अमृत वेले गीत बजा जाग सजनिया जाग। वो राजकुमारी सोई निश्चिंत होकर के, और उठी तो एकदम सब बाबा की जवाबदारियां उसके ऊपर हैं, घर की मालिक है। तो इसलिए सवेरे सवेरे को अमृत वेले को अच्छा बनाने के लिए रात को ही कुछ अच्छे अच्छे संकल्प लेके बाबा की गोदी में हल्के होके सो जाओ और अमृत वेले फिर फ्रेश हो जाओ। ऐसे नहीं जाके सीधा बिस्तर छोड़ के बैठ जाओ, थोड़ा समय अपने को फ्रेश करने के लिए कोई कोई सहारा लेते हैं, कोई चाय थोड़ी पी लेते हैं, कोई कुछ हल्का सा फ्रेश होने के लिए गर्म पानी पी लेते हैं, थोड़ी ड्रिल कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, चुस्त होकर फिर बैठते हैं और अच्छे गीत बजाते हैं, रमणीकता से बैठते हैं, प्यार से बैठते हैं, तो एक वातावरण के अंदर वो जो नींद की लहर है वो खत्म हो जाती है। बाकी नियम बहुत अच्छा है, अगर कोई पालन करता है विधिवत तो वरदानों से उसकी झोली भर जाती है। इसलिए इसमें एक घबराने की बात नहीं है कि नींद कर रहे हैं, ये करता वो करता, कई लोग दूसरे को देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप अपनी मग्न स्थिति में बैठ जाओ आकर के, अगर कोई सो रहा होगा तो भी उसको वाइब्रेशन आएगा, वो जग जाएगा, दूसरे को देखो नहीं, देखोगे तो आपको भी वही असर आएगा या योग नहीं लगेगा, उसको ही सोचते रहोगे, ठीक है। और बाकी फ्रेश होकर के बैठोगे तो मैं समझता हूँ अमृत वेले अच्छा अच्छा चिंतन, अच्छा वरदान, अच्छा सम्मान, अच्छी कोई नशे की बात, अरे भगवान से बातें करने जा रहा हूँ, भगवान ने अपॉइंटमेंट दी है, वो कहता है बच्चे आओ मैं शक्ति दूं, सकाश दूं, मेरे से मिलो, मेरे से शक्ति लो, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, उससे मेरी वार्तालाप होने वाली है। इतना नशे से खुशी से बैठोगे तो नींद नहीं आएगी।
दूसरा प्रश्न है सेवा से संबंधित। सेवा के समय में अक्सर करके स्वभाव और संस्कार के टक्कर बहुत होते हैं, इस कारण से उसके आगे भी संकल्प बहुत चलते हैं तो योग भी नहीं लगता है, उससे बचने के लिए क्या करें?
ऐसा है, सेवा शब्द जहां है वहां है सुख देना सुख लेना, सेवा शब्द ही सुख से लगता है। मैं समझता हूँ सेवा पर हम निकले हैं, अगर उससे मुझे सुख नहीं मिला है, लोगों को सुख नहीं मिला, वो सेवा क्या है? रीस रेस वाली सेवा नहीं करनी है मुझे, बाबा का परिचय देना है, संदेश देना है, जो सेवा मुझे मिलती है वो करनी है। बाकी टक्कर हो गई, स्वभाव संस्कार टकरा गए, तेरे मेरे में आ गए, खुशी गायब हो गई, नशा गया चला गया, तो सेवा किस लिए किया? इसलिए सेवा करने समय बहुत निमित्त भाव से जाओ, निमित्त भाव, निर्माण भाव। ये सेवा माना ही वही सेवा कर सकता है जो नम्रचित है। अगर नम्रता नहीं है, निरहंकारिता नहीं है, तो उसकी सेवा अहंकार में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए सेवा करो, लेकिन झुक करके, मर के, सहन करके, प्यार से, सुख देना है सबको। मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरे को पूछा जाए, अगर मेरे को कोई ने नहीं पूछा तो मैं क्यों सेवा करूं? टकराव वहां ही शुरू हो जाता। इसलिए ठीक है, अगर इसका ही नाम आता है भले आए, हमारा भाग्य तो भगवान के खाते में जमा हो गया। अगर मान सान की इच्छा से परे होके कोई सेवा करोगे तो मैं समझता हूं टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। जहां पर थोड़ा सा भी इच्छा रहती है मुझे इसका रिटर्न मिलना चाहिए और नहीं मिलता है, तो मन की स्थिति बिगड़ती है और टकराव पैदा होता है। और जहां पर समर्पित कर दिया, बाबा आपने जो करा लिया हमने कर लिया आपके नाम पर, मुझे न पानी चाहिए न टोली चाहिए, भले पूछे या न पूछे, हमने बाबा की सेवा की, न्यारे हो जाओ, टकराव किस लिए होगा? लेकिन जहां इच्छा होगी ना, इसको पूछा, देखो इसने तो कुछ नहीं किया, इसको देखो टोली खिला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, मेरे से बात भी नहीं कर, और मैं इतना सब मेहनत करके आई, वहीं अंदर के मन की स्थिति बिगड़ जाती। ठीक है, आपने किया, आपका पुण्य बना, क्यों वर्णन कर रहे हो, क्यों चिंतन कर रहे हो? करके बाबा एक शब्द बड़ा अच्छा देता है, नेकी कर दरिया में लोर, नेकी करो दरिया में डाल दो। आपके पास दरिया बहुत नजदीक है ना, इसलिए कोई भी नेकी का काम करो, दिल से करो, बाबा रिटर्न देगा, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं रखो। नेकी दरिया में डाल दोगे तो दरिया में जब तूफान आएगा ना, तो नेकी आपके लिए नाव बन जाएगी, वो पाल ले जाएगी आप, ठीक है। नेकी की हुई है ना, दरिया में डाल दिया था ना, इसलिए वो उस समय नाव बन के आपके पास आ जाए, ठीक है। इसलिए कभी भी ये नहीं, मेरे को नेकी किया, मैंने इतना किया तो कुछ तो मिलना चाहिए। बाबा कहता क्यों खा के खत्म कर रहे हो? बाबा देने के लिए बंधा हुआ है, देगा। खुशी तो मिलती है अंदर की, आंतरिक खुशी बहुत मिलती है, शक्ति मिलती
है। ओम शांति। आगे का प्रश्न है, तो बाबा जैसे कहते अचानक शरीर छूट भी सकता है, बाबा का बच्चा बन गया सत्ययुग में जाने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन थोड़े समय में अगर शरीर छूट जाए मेरा हाल क्या होगा, वो पूछ रहे।
बाबा ने तो हम सबको बोला ना, एवर रेडी रहो, कोई कभी शरीर कभी भी छूट सकता है, लेकिन अगर मेरे पुण्य की पूंजी जमा है तो वो तो साथ चलेगी ना। पुण्य की पूंजी जमा की है ना हमने, तो पुण्य की पूंजी जमा करते चलो, चिंता नहीं करो, उसका रिटर्न तो बाबा देगा ही। कुछ भी होगा, अगर एक बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि अंत घड़ी अगर 40 साल 50 साल किसी ने पुरुषार्थ किया है, सेवाएं की है, और अंत घड़ी में कोई देहधारी में अटक गया जाके और उसको याद आई, तो उसकी गति क्या होगी। और आपने अगर 5 साल में 3 साल में ऐसा पुरुषार्थ कर लिया कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, तो 3 साल वाला आगे चला जाएगा या 40 साल वाला जाएगा। अंत समय जब आएगा और बाबा 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 कहते, अगर बाबा की याद में शरीर छूटेगा तो उसकी तो गति सदगति हो गई। और अगर 40-50 साल पुरुषार्थ किया, किसी देहधारी की याद आ गई। एक कहानी सुना दूं, बहुत रमणीक कहानी है, शायद सुनी हो आप लोगों ने। कहते एक सेठ जी बड़े चतुर थे और उनके 3 बेटे हुए। तो कलयुग में तो कहते ना, भगवान का नाम लो लास्ट में मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने बड़ी युक्ति से एक का नाम रखा मोहन, एक का नाम रखा कृष्ण, एक का नाम रखा राम। राम कृष्ण मोहन तीनों भगवान के नाम है। तो अंत समय में कोई बच्चा ही याद आएगा और कौन याद आएगा। तो बड़ी चतुराई से उस सेठ जी ने अपने बेटे का नाम रखा कृष्ण, राम, मोहन। तो जब उसकी अंतिम घड़ी आई सामने, तो अंतिम घड़ी के समय लेटे लेटे कहता, राम कहाँ है। तो बोला, जी बाबूजी मैं आपके सामने हूँ। बोला, कृष्ण कहाँ है। बोला, जी बाबूजी सामने हूँ। मोहन कहाँ है। बोला, मैं जी बाबूजी सामने। तीनों जब सामने दिखाई दिया तो उसको अंदर से अचानक गुस्सा आया, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो, दुकान कौन संभाल रहा है। और इतने में उसके शरीर छूट गया। सुना क्या हुई गति, तीनों सामने थे, राम भी मोहन भी कृष्ण भी सब थे, लेकिन अंत में बुद्धि लगी थी, दुकान कौन संभाल रहा है, ये सब यहां बैठे हैं तो दुकान पर कौन कर। इतना गुस्सा आ गया, उसको फेल हो गया हार्ट। तो ये है अंतमति सौगति। अगर राम के बजाय, भगवान के बजाय अंत समय में किसी देहधारी की, किसी चीज की, किसी पदार्थ की याद आई तो गति क्या होगी। इसलिए इतना अभ्यास करो, कुछ नहीं मेरा है, अचानक चला जाऊं तो बाबा बाबा कह के गोदी में चला जाऊं, बस। उसके लिए प्रैक्टिस, बहुत काल का अभ्यास। बाबा कई बार कहता, बहुत काल का अभ्यास होगा ना तो अंतमति सौगति, अच्छी गति मिलेगी।
ओम शांति। एक और प्रश्न है, कोई अगर गलती करता है, मालूम होते हुए भी बाबा ने कहा चुप रहना चाहिए, चुप रहेंगे तो मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अज्ञानी होने के कारण उससे लड़ करके सिद्ध करना चाहिए कि ऐसे ही चलना चाहिए।
क्या अज्ञानी होने के कारण
है, वो अज्ञानी है, समझता नहीं मैं ज्ञानी हूं, चुप रहना है मुझे, बाबा ने कहा चुप रहो, लेकिन वो तो अज्ञानी है, उसके साथ भेद हो गया है, इसलिए उसके साथ लड़ना चाहिए या तो चुप ही रहना चाहिए।
लड़ने की छुट्टी तो कहीं बाबा ने नहीं दी है। शुभ भावनाएं ही हम सब की बहुत बड़ी शस्त्र हैं। किसी की गलती को देख करके मैं अपने आप को गलत क्यों करूं, गलत रास्ता है ना। अगर हम गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बात करने के लिए कोई गलती देख के मैं अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो मैं ज्ञानी कैसा। गलती वो कर रहा है, स्थिति मैं बिगाड़ रहा हूं। अगर कोई गलत कर रहा है, अपने आप पाएगा उसका, मैं क्यों चिंता करूं। ठीक है, अगर मेरा कोई कर्तव्य है, फर्ज बनता है तो शुभ भावना है। अगर बहुत बहुत रहम दिलाता तो जहां से इशारा दिला सकते हैं, जहां से कुछ बात उनको दे सकते हैं, किसी से भी दिला सकते हैं तो दें, और नहीं तो बहुत अच्छी स्थिति बाबा कहता बना करके शुभ भावना का दान दो, ताकि वो अपनी गलती को महसूस तो कर सके। बाकी आप लड़ करके झगड़ के उसके साथ संबंध क्यों बिगाड़ेंगे, उसके तो बाबा ने मना किया।
अच्छा, एक प्रश्न मैं अपनी तरह से पूछता हूँ। भाई जी ने प्रकृति के तत्व के ऊपर कैसे हम प्रयोग करें, उसको भी सात्विक बनाना, वो भी हमारे लिए एक जिम्मेवारी है। कैसे हम उसको अपने संकल्पों के द्वारा प्रकृति को भी सात्विक बनाए, वो जरा प्रकाश डाले तो।
मैंने आपको पहले ये बात क्लास में बताई है, अभी फिर से वो रिपीट करा रहे हैं। मैंने बताया ये पांच तत्वों की प्रकृति है, पहले शरीर पांच तत्वों की प्रकृति है, फिर ये वातावरण में पांच तत्वों की प्रकृति का सहयोग है, और ये इस समय बहुत दूषित हो गई है, इसलिए प्रकृति ये शरीर की भी बिगड़ रही है, वो भी बिगड़ रही है। जितना हम अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, अकाल तख्त पर आत्मा बैठती है, तो अकाल तख्त पर बैठते ही उसके सातों गुण इमर्ज होते हैं। आत्मा के सात गुण हैं, और सातों गुणों को अगर बाबा के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो सागर है, हम स्वरूप हैं। तो परमात्मा के सातों गुण मेरे अंदर जैसे जो कमी आई है वो भरते हैं, और वो गुण जब भरते हैं तो वो गुण पहले शरीर के ऊपर रिफ्लेक्ट करो, इस प्रकृति पर करो। बहुत अच्छा हमारे कैड प्रोग्राम चलता है ना हार्ट वालों का, वो प्रयोग हम लोग उनको सिखाते हैं, क्योंकि आर्टरी ब्लॉक होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो सातों गुणों का हम प्रयोग करना उनको बताते हैं कि जब आत्मा अपने सातों गुणों का समूह अनुभव करने लगती है प्रकृति में, तो ज्ञान का प्रयोग ब्रेन पर, ज्ञान ब्रेन को चाहिए, अगर ब्रेन ठीक है, ठीक निर्णय करता है तो फट से पता चलता है। ज्ञान के बाद पवित्रता का प्रयोग, कमल नयन, मुख नयन, ये जो नयन की कमल की परिभाषा दी गई है, पवित्रता की शक्तियों का यहां पर प्रयोग करते हैं चेहरे पर। शांति का प्रयोग फेफड़ों पर करते हैं, सुख प्रेम का प्रयोग दिल पर करते हैं, हार्ट पर करते हैं, सुख का प्रयोग पेट के ऑर्गन्स पर करते हैं, आनंद का प्रयोग हार्मोन्स पर करते हैं, और शक्ति का प्रयोग इस चमड़ी पर और हड्डियों पर करते हैं। ये सातों गुणों का अलग अलग प्रयोग कराते हैं, और बाबा की सब शक्तियां लेकर के आत्मा जैसे उस स्वरूप में बैठती है, और जहां पर कोई बीमारी होती है तो उसको जैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, बाबा से लेकर के ऐसे देते हैं, तो ये प्रकृति भी निरोगी बनती है इससे। और अगर यही गुण प्रकृति के पेड़ पौधों को, वनस्पति को उधर भी आप देने लगे, कभी शांति का दान दें अपने स्वरूप में स्थित होकर के, कभी प्यार का दान दें, कभी कभी रोग लगता है ना तो हम किसानों को क्या सिखाते हैं, बाबा की पवित्रता की बहुत सफेद किरणें अनुभव करते हुए उनको यहां से रिफ्लेक्ट करो, कीड़े भाग जाएंगे, खेती निरोगी हो जाएगी। तो प्रकृति के तत्वों में जो आज रोग पैदा हुए हैं, अनेक बीमारियां आई हैं, उनका मूल कारण है कि उन पर हम पवित्र, अपवित्र है, अस्वच्छ है। अपवित्र कोई विकार नहीं, केवल काम विकार की बात नहीं है, लेकिन जो उनके पर डाला जा रहा, खादे डाले जा रहे हैं, कीटनाशक डाले, अपवित्र हो गया ना वो, तो उसको हम अगर बहुत पवित्रता की किरणें देते हैं तो धीरे धीरे उसमें शक्ति आती है और वो निरोगी बन जाता है। तो अपने स्वरूप में स्थित होकर के भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा के साथ कनेक्ट होकर के फिर उसकी शक्तियों को ऐसे प्रवाहित करते हैं, ये प्रयोग है। पांचों तत्वों को करो, जहां पर कोई संबंधों में टकराव रुकावटें हो वहां करो, कोई भी विघ्न हो, अपने संस्कार हो, तो ऐसे अपनी स्वरूप में स्थित होकर के, इस देह से डिटैच होकर के बाबा की शक्ति लो, और सूक्ष्म लाइट के रूप में वही शक्ति प्रयोग करो। ओके, ओम शांति।